ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೇ ಎಂ ಪೂಜ್ಯ ದೇವ್ ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕೆ ಊಪರ್ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಕರೆಂಗೆ. ಧನ್ಯ ಹೈ ಆಶೀಷ್ ಜಿ ಕಾಥುರ್ಯಾ ನೀರು ಜಿ ಕಾಥುರ್ಯಾ ಜಿನ್ಹೊನೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೀ ಹೈ. ಗುರುದೇವ್ ಕಹತೆ ಥೇ ಎಂ ಗೀತಾ ಮೇ ಭಿ ಐಸಾ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಲೋಗ್ ಗೀತಾ ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ तो वक्ता तो खैर प्रचार करता ही है, श्रोता को भी लाभ होता है, मुक्ति उसको मिलती है, मगर जो व्यवस्था करता है उसको भी मुक्ति मिलती है, केवल व्यवस्था करने वाले को भी मिलती है. तो आशीष जी नीरू जी ने व्यवस्था यहाँ की है, अब हम लोग जो है गीता का यहाँ अध्ययन करेंगे. संभवतः हिंदी में शिकागो के इस क्षेत्र में ये पहला अवसर है जब हिंदी पर गीता पर प्रवचन हो रहे हैं. भगवान ने कहा कि गीता मेरा हृदय है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता हृदय में पार्थ है, ये पार्थ गीता मेरा हृदय है. एवं गीता की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम पृष्ठभूमि शुरू करेंगे तो उसके अंदर 5-6 छत्र उसी में निकल जाएंगे. कैसे वो शुरू हुआ आप सबको तो थोड़ा बहुत तो विदित ही होगा कि कैसे जो है धृतराष्ट्र राजा बने, कैसे उनके पिता धृतराष्ट्र के पिता का नाम था विचित्र वीर्य. उनके नाम से ही पता लगता है कि उनके अंदर में पुत्र करने की सामर्थ्य नहीं थी, वीर्य उनका विचित्र था. तो उनके कोई संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई तो अब वो राज्य है, राज्य आगे कैसे चलेगा, उसका अधिकारी फिर कौन बनेगा. तो फिर जो है उन्होंने कहा कि उनके उनकी माता ने कहा मेरा एक और पुत्र है वेद व्यास, उनको बुलाते हैं, उनसे जो है फिर वो संतति शुरू होगी. अब बहू ने बात मान ली. तो अब वो वेद व्यास जी देखने में सुंदर नहीं थे, कुरूप थे थोड़े से, और थोड़ा सा उनका रूप भी भयानक टाइप का कुछ था. तो जब वो आए एक एक करके तो एक बहू ने जो है आंखें बंद कर ली. जब आंखें बंद कर ली तो उनका जो पुत्र हुआ वो धृतराष्ट्र हुआ, अंधे हुए. दूसरी बहू आई तो वो जो है डर गई. जो डर गई उसके कारण उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम पांडु था, तो वो बहुत जो है उनको पांडु रोग कहते हैं, पांडु रोग था, पीलिया रोग इसको कहते हैं, उनको पीलिया था. उसके बाद में फिर उनकी माता ने कहा कि ये तो नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं, हमको तो सही संतान चाहिए, स्वस्थ संतान चाहिए. फिर एक बार उनको भेजा, तब वो उनको नहीं भेज के दासी को भेज दिया उनके पास में, वेद व्यासी के पास. और दासी से जो पुत्र हुआ वो हुए विदुर. तो धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये 3 भाई थे. इसके बाद में धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, जो राष्ट्र को धृत करता पकड़ता है, धृतराष्ट्र, जो किसी को चीज को पकड़ के रखे वो धृतराष्ट्र है. इस माने से हिसाब से हम सब हम भी धृत करके पकड़ के रखे हुए हैं सब। भगवान शंकराचार्य के टाइम में गीता के ऊपर व्याख्याएं बहुत थी, बहुत व्याख्याएं थी, और ऐसे ऐसे मतलब निकाले गए थे कि सब अपने अपने हिसाब से बहुत सी संप्रदायें बनी हुई थी। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं इसके ऊपर में एक भाष्य लिखूंगा, मगर क्यों लिखूंगा इसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। तो पहले उनका उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है,
ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्विमे लोकाः सप्तद्वीपाचमे दिनी।
ओम नारायणः, सबसे पहले ओम तो आपको मालूम है प्रणव हम लोग कहते हैं, वो ब्रह्म का जो है शब्द है। नारायण बोले सबसे पहले नारायण थे और कुछ नहीं था, अब वो नारायण कैसे हैं बोले अव्यक्त के पर हैं, अव्यक्त के ऊपर हैं, इसका मतलब हुआ नारायण है, उनके पास में एक शक्ति है जिसका नाम माया है। माया का एक रूप होता है अव्यक्त, अव्यक्त मतलब वो अभी उसमें से कुछ निकला नहीं है, शक्ति है मगर अभी प्रकाशित नहीं हुई है। उस अव्यक्त शक्ति से एक अंड निकला, अंड निकला मतलब ब्रह्मांड, एक शेप निकला, और उस रूप के हिसाब से क्या हुआ फिर व्यक्तम संभवम, उस अंड से फिर जो है ब्रह्मांड निकला, उसके क्या बना लोकहा, उससे फिर सारे लोक बने, 14 लोक हैं हमारे, वो पीछे आएगा कैसे 14 लोक बने, और उसके बाद में फिर सप्तद्वीपाच मेदिनी ये पृथ्वी बनी जिसके अंदर 7 द्वीप हैं। तो एक श्लोक के अंदर उन्होंने बता दिया नारायण है, उनकी एक शक्ति है माया, माया का एक रूप है अव्यक्त जो प्रलय अवस्था में रहता है, उसके बाद में व्यक्त होता है, व्यक्त के अंदर ये सारा का सारा हमको जो दिखाई पड़ रहा है वो व्यक्त है, और उस व्यक्त के से जो है सारे द्वीप वगैरह बने, 14 लोक बने, और ये पृथ्वी बनी जो सप्तद्वीपा पृथ्वी है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, उस भगवान ने इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा करते हुए पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म कर्म योग ग्रहण करवाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अब रचना तो हो गई, पृथ्वी की रचना हो गई, अब रचना हो गई तो इसको देखने वाला चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रजापति, तो प्रजापति बनाए, मरीचि आदि प्रजापति हुए कि आप इनका पालन करेंगे, कैसे पालन करेंगे बोले प्रवृत्ति धर्म करना होगा। ये देखिए गीता का ये पहला धर्म है प्रवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म मतलब उन्होंने साथ साथ लिख दिया कर्म योग करना होगा। तो ये जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे कर्म योग करते थे, और हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम जो कर्म करते हैं वो योग नहीं होता है, योग मतलब जो आपको परम से मिला दे उसको हम योग कहते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं वो योग नहीं है, वो केवल कर्म है, मगर हम उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि अगर आप इस तरीके से अगर कर्म करोगे तो वो कर्म योग बन जाएगा, वो कर्म आपको भगवान से मिला देगा। तो पहले उनको मरीचि वगैरह उन लोगों को उन्होंने कर्म योग सिखाया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनसे अलग सनक सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण है ऐसा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग का ग्रहण करवाया। तो भगवान ने प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण मतलब आपको काफी कर्म करने होंगे, और कर्म किस तरीके से करने होंगे जिससे कि आपका योग हो जाए। फिर दूसरी रचना की, उसमें सनक सनंदन सनातन कुमार को बनाया, उनको क्या दिया, उनको ज्ञान और वैराग्य दिया कि आप लोग जो है ज्ञान और वैराग्य करना, उसको निवृत्ति धर्म कहते हैं। तो गीता में दो धर्म आपको मिलेंगे, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म, दोनों ही धर्म आपको तत्व तक पहुंचा देंगे, आत्मन तक पहुंचा देंगे, ब्रह्मन तक पहुंचा देंगे। अब आप लोग सोचते हो कि ये कैसा हो सकता है, प्रवृत्ति धर्म में तो बहुत काम करना पड़ता है और निवृत्ति धर्म में काम नहीं करना पड़ता है, वो काम करने से भी वहां पहुंचेंगे, काम नहीं करने से भी पहुंचेंगे, तो सबको कौन सा प्रिय मार्ग लगेगा? काम नहीं करना पड़े। अर्जुन को भी यही शंका हुई थी, जब विषय आएगा तो आपको बताएंगे। अर्जुन भी कहता है, मेरे तो क्यों घोर कर्म करवा रहे हो, युद्ध क्यों करवा रहे हो, आपने हमको ज्ञान मार्ग भी बताया, मैं ज्ञान से आगे बढ़ूंगा, मुझे कर्म करने को क्यों कहते हो, क्यों युद्ध करने को कहते हो? तो भगवान आगे बताएंगे क्यों युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह वो कहते हैं, वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप और दूसरा निवृत्ति रूप। प्रवृत्ति रूप भी आपको वहीं लेके जाएगा, निवृत्ति भी वहां लेके जाएगा, दोनों ही एक मार्ग के दो नाम हैं, उसके उत्तराधिकारी अलग अलग हैं। जो जगत की स्थिति कारण तथा प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? ये धर्म की परिभाषा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। शंकराचार्य जी कहते हैं धर्म वो है जिससे जगत की स्थिति बनी रहती है, अधर्म आएगा तो जगत नाश हो जाएगा, तो जगत की स्थिति के लिए धर्म का पालन करना जरूरी है। तथा इसमें दो चीज उन्होंने बताई है कि अगर आप इस धर्म का पालन करोगे जैसा गीता में कहा है तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होता है अभ्युदय, दूसरा है निश्रेय। अभ्युदय मतलब मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ रहते रहते आपको मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको जो है आर्थिक या यहाँ की जो भी उन्नति है वो भी मिलेगी, एवं साथ साथ में मुक्ति भी मिलेगी। अब बताओ आप ऐसा धर्म पालन करना चाहोगे? एक धर्म पालन करने से यहाँ भी आपकी उन्नति होगी, जो संसार में अभी हम केवल एक काम कर रहे हैं, यहाँ की उन्नति देख रहे हैं, मुक्ति होगी कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, इसका नहीं पता है। मगर भगवान कहते हैं कि अगर आप गीता में जैसे धर्म कहा गया है जिसके कारण जगत की स्थिति बनी रहती है, उस तरह से अगर आप धर्म करोगे यहाँ भी जीवन काल में भी आपकी उन्नति होगी और इस जीवन के बाद में भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें करना क्या है? तो बोले ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो आपके आश्रम हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में, तो आपको वो ही काम करना है जो जो आपको काम कहे गए हैं। ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण करे, ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण का जो काम है वो करे, ब्राह्मण का गृहस्थ में जो काम है वो करे, ब्राह्मण का जो वानप्रस्थ में काम है वो करे। तो ये सारे के सारे धर्म जो है उसमें बताए हुए हैं। तो अगर सब कुछ बताए हुए हैं तो फिर क्या हुआ? तो बोलते बहुत काल के बाद में जब धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण में कामनाओं की विकास होने से विवेक विज्ञान ह्रास हो गया, जिनके पास में ये धर्म था, जिनको प्रचार करना था, अब उनके मन में क्या हुआ? उनके मन में कामनाएं आ गईं, जिसको हम अंग्रेजी में डिजायर्स कहते हैं, कामनाएं आ गईं। जैसे ही कामना आ गईं ये धर्म उनसे छूट गया, इस धर्म का ह्रास हो गया, धर्म का और पता नहीं लगा। जब धर्म का पता नहीं लग रहा था तो क्या होता है, जब धर्म चला गया तो अधर्म बढ़ेगा। धर्म का ह्रास होना मतलब अधर्म का बढ़ना, जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर अवतरण करते हैं, आते हैं। तो भगवान को आना पड़ा, आके उन्होंने फिर अधर्म को खत्म किया, धर्म को फिर से बढ़ाया। देखो धर्म और अधर्म ना दोनों ही जो है मनुष्य के भीतर रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि मैंने आके यहाँ पर एक ध्वजा लगा दी कि ये मेरा धर्म है, धर्म स्थापित हो गया, ऐसा नहीं होता है। धर्म और अधर्म दोनों ही भीतर हैं, अगर अधर्म को हटाना है तो साफ करना पड़ता है, साफ खत्म, जो अधर्मी लोग हैं उनको खत्म करना पड़ता है। तो भगवान ने भी ऐसा किया, अधर्म करके उनको हटाया। उक्त दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों रूप में ग्रथित किया। सारा का सारा जो ज्ञान भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ये उस टाइम में नहीं लिखा गया। वेद व्यास जी ने सारे पुराण सारे उपनिषद के ऊपर में संकलन करके उनको सब कंपाइल करके जब इकट्ठा किया, चारों वेद लिख दिए, पुराण वगैरह लिख दिए, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। अब वो तो ज्ञानी थे, ज्ञानी होने के कारण भी उनके मन के अंदर कुछ ऐसा लगा रहा कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। तब नारद जी आए। नारद जी जब आए तो उन्होंने उनसे पूछा, नारद जी से, आप तो सब जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, मेरे को बताओ मेरे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है। मैं ब्रह्मन को भी जानता हूँ, मैं आत्मन को भी जानता हूँ, मैंने वेदों की सारी संकलन कर दिया है, कितने पुराण लिख दिए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक आप जो है भगवान की लीला का वर्णन नहीं करोगे तब तक जो है आपको सुख नहीं मिलेगा। तब उन्होंने ये महापुराण लिखा। तो बोला मेरे को कैसे पता लगेगा भगवान की लीला, भगवान की लीला बहुत आगे हो चुकी है, मेरे को कैसे पता लगेगा। फिर उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि आप जो है ध्यान करो, ध्यान के अंदर आपको सब मिल जाएगा। वेद व्यास जी ने ध्यान किया और सारी घटना जो है उनके मस्तिष्क में आ गई कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, और उन्होंने सारा का सारा लिख दिया। इसलिए इसको स्मृति कहते हैं। एक होती है श्रुति, श्रुति मतलब जैसे वेद, वेद क्या है वो ध्यान में सारे सुने हुए हैं, और स्मृति जो बाद में लिखी जाती है। तो वेद व्यास जी ने बाद में उनको लेके स्मृति उसको मेमोरी से फिर प्रकट किया, तो ये स्मृति कहलाएगी। कहते हैं तत् इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्भेग्यम यार्थम। गीता शास्त्र का जो मीनिंग है, ऐसा ये गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ सार संग्रह रूप है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं। इसका मीनिंग समझना, इसका अर्थ समझना बहुत बहुत कठिन है। जब तक कोई आपको बता नहीं दे, आप इसको जितनी बार मर्जी पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, कठिन है। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, यद्यपि इसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने पदछेद, पदार्थ, वाक्यार्थ, आक्षेप समाधान पूर्वक इनकी विस्तृत व्याख्याएं की हैं, तो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा इस गीता शास्त्र के अनेक प्रकार से अत्यंत विरुद्ध, देखो उनके टाइम में जो है अपोजिट मीनिंग्स निकाले हुए थे, जिसने जैसा समझा वैसे मीनिंग निकाल दिया, विरुद्ध अनेक ग्रहण, अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर उसका विवेक पूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा। संक्षेप में वो कहते हैं बहुत मैं कम शब्दों में इसकी व्याख्या करूंगा। वेरी गुड। फिर संक्षेप में इस गीता शास्त्र प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार का अत्यंत उपरीति रूपी है। यह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है। संक्षेप में गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है? कि आपको संसार से पूरी की पूरी उपरति हो जाएगी, संसार आपको दुख नहीं देगा, संसार में रहते हुए भी आपको संसार का दुख नहीं लगेगा। अभी अभी हमारा क्या हाल है? संसार आपको दुख देता है? बोलते हैं इसी संसार में रहते हुए आपको संसार का दुख नहीं लगेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। इसीलिए अंत में जाके भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दो, मेरे पास चले आओ, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। फिर कहते हैं, अभ्युदय संसारिक उन्नति ही जिसका फल है। देखो आप इस धर्म को पालन करोगे तो संसारिक उन्नति, अभी जो आप खोज रहे हो ना मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी, जिसके अंदर आप केवल कर्म करते हो, कर्म योग नहीं करते हो, तो बोले ये उन्नति भी आपको मिलेगी, मगर इसको थोड़ा सा अगर बदल दो तो ये आपका चित्त शुद्धि भी होगी, दोनों काम आपके हो जाएंगे। तथा सिद्धांत करण पुरुष को पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति कराकर पहले आपको कर्म योग करके आपको योग्य बनाना है। आपको अगर ज्ञान अभी दिया जाए तो आप ज्ञान लेने लायक अभी नहीं हो। आपके उसको अधिकार पाने के लिए पहले आपको मन का शुद्ध करना है। मन जब शुद्ध हो जाएगा उसके बाद ज्ञान आपको एक सेकंड में हो जाएगा। ज्ञान होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम आते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट हिंदी बताइए, कार्य, कारण कार्य, कारण और कार्य। जो भी चीज हम इस दुनिया में देखते हैं वो सारी की सारी कार्य है, इफेक्ट है। अगर वो इफेक्ट है, वो कार्य है, तो उसका कोई कारण जरूर होगा। तो जगत अगर हम देख रहे हैं तो इसका कारण जरूर है। तो शास्त्र का, अध्यात्म विद्या का पहला नियम है, अगर कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य है। अगर जगत हमको दिख रहा है तो इसका कारण अवश्य है। दूसरा नियम, कार्य जो है कारण का ही दूसरा रूप है। कार्य जो है कारण का ही दूसरा रूप है। सोने का अगर जब हम अलंकार बनाते हैं तो ये कान का है, ये चूड़ियां हैं, ये हार है, क्या सब सोना ही है? तो सोना कारण है, अलंकार उसके कार्य हैं। तो कार्य क्या है? कार्य कारण का ही दूसरा रूप है। नियम नंबर दो। तीसरा नियम, अच्छा दूसरे नियम में, तो ये जगत हमें दिखाई पड़ रहा है तो वो क्या है? वो ही कारण का। अगर जगत दिखाई पड़ता है तो वो कार्य है। और इस जगत का कारण क्या है? हम लोग सब जानते हैं इस जगत का कारण परमात्मा है। कहां से आया? मतलब ब्रह्मन से आया। सब कारण कौन है? परमात्मा है। दूसरे नियम के हिसाब से वो ही परमात्मा दूसरे रूप में ये सारा जगत बन गया। तो ये जगत क्या है? परमात्मा है। तीसरा नियम, अगर कार्य में से कारण को निकाल लें तो फिर क्या कार्य बचेगा? अगर सोने के अलंकार में से सोना को निकाल लें तब क्या हमें कंगन का रूप दिखा पाएंगे? कंगन में से अगर हम सोना निकाल लें, कंगन गोल है, उसमें से सोना निकाल लिया, सोना निकालने के बाद में आप कंगन का रूप दिखा सकते हो हमको? नहीं दिखा सकते ना। जगत में से उसका कारण अगर निकाल लें, जगत रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये हमारे तीन नियम हैं अध्यात्म शास्त्र के। पहला नियम, अगर कार्य कहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। नंबर दो, कार्य जो है कारण का ही दूसरा रूप है। तीसरा, कार्य में से कारण को निकाल लें तो कार्य नहीं बचेगा। आप सोने और आभूषण से उसको रिलेट करें ना, उसको साथ में लगाएं ना, तो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। और गीता में कहा गया कि दो मार्ग हैं, हम लोग को दो नहीं चाहिए ना, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का मतलब यहां पर भी हमको उन्नति चाहिए, जीवित काल के अंदर भी हमको उन्नति समृद्धि चाहिए, और इस काल के, इस जीवन के बाद भी हमको मुक्ति चाहिए। किसके लिए प्रवृत्ति मार्ग है और किसके लिए निवृत्ति मार्ग है वो बाद में आएगा, मगर दोनों ही मार्ग एक जगह लेके जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग भी आपको वहीं पहुंचाएगा और निवृत्ति मार्ग भी वहां पहुंचाएगा। अब हम लोग आते हैं हम लोग के पूज्य गुरुदेव के BMI चार्ट के अंदर। इस दुनिया के अंदर केवल दो चीजें हैं, एक तो आत्मन है जिसको हम लोग ओम कहते हैं यहां पर, और उसके नीचे वी है। वी है मतलब वासना, वासना का मतलब हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम किसी चीज को अच्छा समझते हैं, ये प्रिय है हमको, और कुछ चीजें अप्रिय हैं। तो जो प्रिय चीजें हैं वो उनको बार बार हम लेना चाहते हैं, ये हमें अच्छी लगती है, ये हमको बार बार मिलती रहे, और जो अप्रिय वस्तु है उसको हम नहीं लेना चाहते हैं, उसको दूर हम करना चाहते हैं। तो वासना जो है आपकी प्रिय और अप्रिय, ये लिस्ट हमारी बनती रहती है। हमने जितने भी अनुभव आज तक लिए हैं उन अनुभव को आपके मस्तिष्क के अंदर बराबर जो है उस अनुभव का जब उसका फल आता है तो या तो हमें वो फल प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है। अगर प्रिय लगता है तो हम बोलते हैं ये तो हमको फिर बार बार मिलना चाहिए। आपको अगर लॉटरी की टिकट के अंदर पैसा मिल गया तो वो आपको प्रिय लगेगा या अप्रिय? प्रिय, और चाहिए। कोई खाने की वस्तु अगर आपको अच्छी लगती है तो क्या करते हैं? प्रिय है, वो और चाहिए, फिर खाएंगे। अगर वो खाने की वस्तु आपको अच्छी नहीं लगी फिर अप्रिय, दूसरी बार नहीं टेस्ट करेंगे उसको, नहीं खाएंगे हम। तो ये लिस्ट हमारी प्रिय और अप्रिय की बनी रहती है, और इस प्रिय और अप्रिय के कारण जो है हमारे सारे कर्म आगे चलते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास में तीन कारण है, एक शरीर है, एक मन है और एक बुद्धि है। इस तीन कारण से जो है दुनिया के साथ में व्यापार करते रहते हैं। तो शरीर से हम क्या करते हैं? बॉडी परसीव्स ऑब्जेक्ट। शरीर से हम दुनिया की सारी वस्तुओं को देखते हैं। माइंड फील्स इमोशन, मन से जितनी भी भावनाएं हैं वो सारी हमारे अंदर आती हैं। और बुद्धि से हम जो निश्चय आत्मिका बुद्धि से हम जो है निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं, ये सब चीज़ें बुद्धि का फंक्शंस हैं। तो वासना से लेकर OET तक, वासना BMI PFT OET इनको हम अनात्मा कहते हैं और ओम को हम आत्मा कहते हैं। तो आपके पास में आत्मा है, आप में से किसी को संशय है आत्मा के बारे में कि आपके पास आत्मा नहीं है? किसी को भी डाउट नहीं है, सबके पास में आत्मा है। और आत्मा को छोड़ के हमारे पास एक और चीज है, वो है शरीर मन बुद्धि। और इस शरीर मन बुद्धि से हम व्यापार कर रहे हैं दुनिया के साथ में, एक जगत है। तो शरीर जिस चीज से बना हुआ है उसी चीज से, पंच महाभूतों से ये जगत भी बना हुआ है। और इस जगत की और इस शरीर की खासियत एक है, क्योंकि ये माया का बना हुआ है इसलिए इसमें परिवर्तन और नाश बराबर होता है। अनात्मा की जितनी भी वस्तुएं हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं? आपका अपना अनुभव है, अभी कुछ सोचा, थोड़ी देर के बाद में परिवर्तन आ गया, मन फिर दूसरा कुछ सोचने लगता है, शरीर में परिवर्तन हुआ है, बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है, और इनका नाश भी होता है, ये भी हम देखते हैं, नाश भी होता है। तो हमारे पास में दो ही चीजें हैं, एक है आत्मा और दूसरी, समझ में आ रहा ना आप लोग का? तो अनात्मा का गुण क्या है? ये परिवर्तनशील है और नाशवान है। आपको कोई ऐसी दुनिया की चीज नजर आती है जिसमें परिवर्तन नहीं है और जो नाश नहीं होने वाली है? आप बता सकते हैं कोई भी एक वस्तु दुनिया की हमको बताइए जिसमें परिवर्तन नहीं है और जिसमें नाश नहीं लगा हुआ? कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। और जो चीज परिवर्तनशील है, नाशवान है, उससे कभी आपको सुख मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अंत में नाश होगा। जिस दिन नाश होगा उस दिन सुख होगा या दुख होगा? दुख होगा, दुख होगा। और एक तत्व ऐसा है जो जिसमें कोई विकार नहीं है और जो निरंतर है, अब वो तत्व है आत्मा। उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज, कोई नाश, उसमें वो नित्य है। चूंकि वो नित्य है इसलिए सुख उसमें है। हमारी आज की सोच ऐसी है कि सुख बाहर है, मगर शास्त्र कहता है कि सारे सुख का स्रोत, सोर्स आपके भीतर है। तो अगर आपको नित्य सुख चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर? भीतर जाएंगे? वेरी गुड, मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, कहाँ जाना है। हम सुख के लिए कहाँ जाते हैं? आपको वहां सुख मिलेगा? क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखो नहीं मिलेगा वहां। सुख का स्रोत जो है भीतर में ही है। गीता जब शुरू होती है तो उसका पहला वर्ड क्या है, पहला शब्द क्या है? धर्म। अब उसके अंतिम श्लोक में चले जाइए, उसका अंतिम शब्द क्या है? मम। पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम। अब दोनों को साथ लगा दीजिए, धर्म मम, मम धर्म, मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है, यही सारी गीता का व्याख्या है। मुझे क्या करना चाहिए, ये सारा का सारा इसमें गीता में बताया गया है। और अगर आप गीता को फॉलो करोगे, इसका अनुसरण करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? दो चीजें, कौन कौन सी? यहां उन्नति, इस जीवन में उन्नति, दूसरा मुक्ति। दोनों चाहिए कि नहीं आपको? अभी आपका क्या हो रहा है? एक चीज हो रहा है केवल, 16 घंटे खटने से केवल अभी यहां की उन्नति हो रही है। मुक्ति होगी उससे? नहीं होगी। तो गीता का धर्म हमें पालन करना है। दोनों ही मार्ग से आपको परम की प्राप्ति होगी, परम मतलब आत्मन की प्राप्ति। दोनों ही मार्ग से, कितने मार्ग हुए हमारे पास? दो मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के अंदर आपको कर्म करना है, निवृत्ति मार्ग में कर्म नहीं करना, दूसरा कुछ करना है, हम बाद में बताएंगे आपको दूसरा क्या करना है। तो दोनों ही आपको परम तक लेके चले जाएंगे। गीता प्रस्थान त्रयी में से एक ग्रंथ है। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी किसको कहते हैं? प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीन को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी मतलब आप जहां पर खड़े हो वहां से आप प्रस्थान करना शुरू करोगे। प्रस्थान मतलब आप जाना शुरू करोगे, कहां जाओगे? परम की तरफ। प्रस्थान मान, आप जब एयरपोर्ट जाते हो ना, उसमें लिखा रहे ना डिपार्चर नॉन, आप इंडिया जाओगे तो वहां लिखा रहेगा प्रस्थान, यहां से प्रस्थान कीजिए। तो ये प्रस्थान त्रयी के अंदर एक ग्रंथ गीता है। आप जगत में जहां भी खड़े होगे, अगर इसको पढ़ के अगर इसको आप अनुसरण करोगे तो आपका प्रस्थान शुरू होगा। अगर आप प्रस्थान करना चाहते हो तो कहां, किस तरह प्रस्थान होगा? परम की तरफ। परम कहां है आपके पास? भीतर है। तो इसको पढ़ने से आप भीतर की तरफ जाओगे, आपको वो तत्व मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा जो सुख निरंतर रहने वाला है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, जो 24 घंटे उपलब्ध है, जो सर्वत्र अवेलेबल है, सर्वत्र उपलब्ध है, ऐसा सुख, वो चेतन स्वरूप है, वो किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है। देखो अभी जो आपको सुख मिलता है ना, वो वस्तु और व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। हम सोचते हैं कि ये वस्तु मिल जाएगी तो हमें हम सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति से हमारा संपर्क बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा अभी हमारा विचार है। मगर आत्मा का सुख वस्तु ऊपर में या किसी व्यक्ति के ऊपर में स्थित नहीं है, वो स्वतंत्र है। और अभी हमें क्या करना पड़ता है, अभी सुख पाने के लिए हमें काफी परिश्रम करना पड़ता है। बताओ बिना परिश्रम के कभी आपको सुख मिला है? अच्छा अगर मैं कहूं कि आपको ऐसा सुख देता हूं जो सुख जो है आपके पास में निरंतर रहेगा और उस सुख के लिए आपको परिश्रम भी नहीं करना है, अब वो सुख जो है 24 घंटे आपके साथ रहेगा, 365 दिन आपके सारे जीवन तक रहेगा, सर्वत्र रहेगा। हम लोग तो भारत से आए कि यहां अमेरिका में हमको सुख मिलेगा, फिर भारत जाएंगे तो लगता है कि क्या पता नहीं फिर सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर ये आत्म सुख ऐसा है कि आप अमेरिका में रहो चाहे भारत में रहो, जहां रहो वहां आपको मिलेगा, प्रयास भी नहीं करना है। ये सुख जो है जड़ वस्तु का सुख नहीं है, ये चेतन सुख है और ये उपलब्ध है। बताओ आप में से कौन कौन लोग चाहेंगे, हाथ उठाओ। अरे सबको चाहिए, वाह सबको चाहिए, बहुत अच्छा। गीता में महाभारत के, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और ये गीता जो है उसके बीचों बीच स्थान पर है। और भगवान ने गीता को उपदेश कब किया, अर्जुन आए वहां पर युद्ध क्षेत्र में और आकर वो मोहित हो गए। मोहित हो गए तो भगवान ने कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ दिया कि उसका मोह चला जाए, वो भगवान का अपना ही संकल्प उसमें डाला हुआ था कि ये मोहित हो जाए। और मोहित होने का कारण क्या था, कारण ये था कि उसको, उसने जाके युद्ध भूमि में सामने में अपने भीष्म पितामह, अपने पितामह को देखा, अपने गुरु को देखा और गुरु को देख के फिर मोहित हो गया कि इनको हमको मारना पड़ेगा। उन्होंने पूरा गीता का ज्ञान दिया। जो आदमी विषाद में चला गया, अर्जुन उस टाइम विषाद में चला गया, बैठ गया, उस विषाद के लिए, उस डिप्रेशन के लिए भगवान ने कोई आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथी कोई दवाई नहीं दी, दवाई की दरकार भी नहीं थी। भगवान चाहते तो 1 सेकंड के अंदर अर्जुन को ठीक कर सकते थे, भगवान अगर चाहते तो सारी की सारी कौरव सेना को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते थे, भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने इसलिए नहीं कहा, ऐसा किया कि अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ये ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये पूरी रचना की, ताकि हमको भी ज्ञान मिल जाए। वो हम भी सब मोहित हैं, हम सब संसार से दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो भगवान ने पूरा का पूरा 18 अध्याय के अंदर, जब शुरू किया भगवान ने, 2 अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने ज्ञान शुरू किया है। और अगर आप इसका जो है चैंटिंग करो तो आपको 2.5 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाती है। 1800 श्लोक में से पहला अध्याय और 10वें श्लोक तक 2 अध्याय को निकाल दिया जाए तो 2.5 घंटे के अंदर में युद्ध भूमि के अंदर भगवान ने उसको ज्ञान दिया। और विषाद युक्त अर्जुन फिर से खड़ा हो गया और युद्ध करने लगा। हम अभी विषाद में जाते हैं, कितना समय लगता है, कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। क्यों हम विषाद में जाते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा उस दिन विषाद और नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप विषाद से छूटना चाहते हैं तो आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो भगवान ने इस युद्ध को रोकने की काफी चेष्टाएं की। पहले तो उन्होंने देखो, कौरव दुष्ट थे और पांडवों में कुछ कमजोरियां थी, वीकनेसेस थी। तो भगवान जो है ना, दुष्टों के साथ में कभी भी उनका समर्थन नहीं किया, मगर पांडवों में कमजोरियां थी फिर भी उनके साथ रहे वो। भगवान के रहते रहते भी पांडवों की कमजोरियों के कारण उनको काफी दुख उठाना पड़ा। अब कमजोरी, अब जुआ खेलने बैठ गए, कमजोरी थी। क्यों कमजोरी? हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा पास टाइम है, जुआ खेलना, गैम्बलिंग हम खेलते हैं, खेलो। फिर कमजोरी, हमने सारा राज्य लगा दिया जुए पर, जो कुछ भी धन था वो भी लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने आप को लगा दिया, अपनी पत्नी को भी लगा दिया, सब लगा दिया। हार गए, हार जाने के बाद में सारा राज्य वगैरह चला गया। और ये जो अधर्म हो रहा था, फिर द्रौपदी को उठा के लेके आए, उसको वस्त्रहीन करने की चेष्टा की गई। इतने लोग बैठे हुए थे वहां पर राज्यसभा के अंदर में, मगर इस अधर्म के ऊपर में किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे। फिर भगवान ने आके वस्त्र अवतार लिया और द्रौपदी की लाज बचाई। और उनके जैसा उनका निर्णय हुआ कि आपको जो है 12 साल और 1 साल अज्ञातवास, 12 साल आपको वनवास में रहना होगा, 1 साल अज्ञातवास। मान लिया पांडवों ने, ठीक है हमने गलती की है। गए, 13 साल खत्म हो गया, वापस आए, अब बोले मेरा राज्य दो। कौरव बोले हम तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो फिर भगवान कृष्ण दूत बन के गए कि चलो भाई, तुम पूरा राज्य नहीं देते हो, 5 गांव दे दो, हम फिर भी खुश हैं, नहीं हम लोग युद्ध करेंगे। हमारे गुरुदेव तो और इसको विस्तार कहते थे, करते थे, बोले नहीं अच्छा ठीक है, तुम एक मकान दे दो जिसमें 5 स्टोरी हो, 5 तल्ले हों। हालांकि उस टाइम में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती थी। अच्छा ठीक है, 5 फ्लैट दे दो, नहीं फ्लैट भी नहीं, 5 रूम का एक फ्लैट दे दो, तब भी हम मानने को तैयार हैं। नहीं, दुर्योधन कहा मैं तो आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब देखो अधर्म की पराकाष्ठा, भगवान ने पूरी चेष्टा कर ली। भगवान ने कहा अब युद्ध छोड़ के और कुछ उपाय नहीं है। अब कौरव भी भगवान के पास पहुंचे, आपको सहायता करनी है हमको, तो भगवान कहते हैं ठीक है हम सहायता करेंगे। हमारे पास में 2 सेनाएं हैं, एक 11 अक्षौणी सेना है, दूसरी 7 अक्षौणी सेना है। मैं 7 अक्षौणी सेना के साथ जाऊंगा और दूसरी 11 होंगी, आपको जो लेना है ले लो। दुर्योधन को पहला ऑप्शन ले लो, कौन सा लेना है। दुर्योधन ने सोचा कि अगर इनको हराना ही है तो हमको कौन सी चाहिए, जो बड़ी सेना बोले। तो उसने निर्णय किया कि भगवान मेरे को 11 अक्षौणी सेना दे दो, आपको नहीं चाहिए, आप जाओ 7 अक्षौणी सेना के साथ में। और भगवान ने यह भी वादा किया कि मैं जिस सेना के साथ रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोले तो बड़ी अच्छी बात है, 11 अक्षौणी के सामने 7 अक्षौणी, ये तो जीत हमारी ही हमारी है। वो खुशी खुशी चला गया। और अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान आप हमारे साथ रहो, 7 अक्षौणी सेना ही ठीक है। इसके बाद में युद्ध का निश्चय हो गया। कहते हैं कि इस युद्ध को तैयारी करने में 12 साल लगे थे। ये सब जितना भी व्यवस्था करनी थी ये सब करते करते बोलते हैं 12 साल करीब समय लग गए थे। अर्जुन को पता था कि हम युद्ध भूमि में क्यों जा रहे हैं, और उसके पास में जो गांडी वगैरह थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वो सब दिव्य अस्त्र शस्त्र थे उसके पास में। मगर उसको कुछ लोगों से भय था, जो कौरव पक्ष में कुछ लोग थे उनसे कुछ भय था उनको। कुछ लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको इच्छा मृत्यु थी। कर्ण, इन सबसे उसको भय था कि इन लोगों को कैसे हम पराजय कर पाएंगे। मन ही मन अर्जुन को इसके बारे में डर था, मगर भगवान उसके साथ थे। जैसे ही युद्ध भूमि में आया उसने कहा कि भगवान मेरे यथ, देखो भगवान पांडवों के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, अर्जुन जो कहे उसके हिसाब से काम करने लगे। गीता में आता, शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि भगवान जो है भक्त के नौकर बन के भी आ जाते हैं। इसलिए भगवान जो है भक्ति नहीं देना चाहते, क्योंकि नौकर बनना पड़ेगा। ज्ञान देने को तैयार है, मुक्त करने को आपको तैयार है, तुरंत आपको ज्ञान दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, मगर भक्ति, भक्ति बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपके अंदर भगवान को आके आपको आपकी सेवा करनी होगी। अब अर्जुन के सारथी बने भगवान, तो अर्जुन कहता है कि भगवान अब लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि उस तरफ में सेना में कितने लोग महारथी अति रथी सब हैं, मैं समझ तो लूँ कितने किन लोगों के साथ मेरे को युद्ध करना है। भगवान कहते चलो, जैसा उसने कहा। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं नो मैंस लैंड होती है बीच में, उधर एक तरफ सेना कौरव की खड़ी है और इधर में पांडवों की सेना खड़ी है, बीच में ले गए। भगवान को तो गीता कहनी थी, ले जाकर रथ उन्होंने खड़ा कर दिया जहां करना चाहिए था। कहां खड़ा किया? भीष्म पितामह जिसकी गोदी में अर्जुन खेला है, द्रोणाचार्य जिनसे धनुर्विद्या सीखी है उनके सामने खड़ा कर दिया। और खड़ा करने से एक रोग उसको तुरंत लग गया। अब वो रोग जो है हम सबको है, उस रोग को कहते हैं अर्जुन रोग। वो रोग हम सब ग्रस्त हैं उस रोग से। क्या वो रोग? ये है मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, बस इतना ही हुआ। ऐसा नहीं था कि उसको ये नहीं मालूम था कि कौरव पक्ष में कौन रहने वाले हैं, और ये कौरव पक्ष वाले सारे के सारे शत्रु हैं। जब वो आया था बहुत उत्साहित था, मगर जैसे ही उसने दूसरी तरफ के लोगों को देखा, तो वहाँ हम गीता के पहले अध्याय में देखेंगे कि वहाँ पर उसने माता पिता भाई चाचा बहन इन सबको देखना शुरू कर दिया। देखो ये जो कौरव और पांडव है ना, इसके आध्यात्मिक अर्थ भी है। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि आपके मन के अंदर भी कौरव पांडव है। कौरव पांडव मतलब गलत सोच अच्छी सोच, अच्छी वृत्ति गलत वृत्ति, अच्छी वृत्ति पांडव 5 हैं, कम होती हैं, और गलत वृत्ति 100। पॉजिटिव थॉट निगेटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होती हैं, पॉजिटिव थॉट थोड़ी होती हैं। तो ये इसका आध्यात्मिक मीनिंग, ये आपके भीतर सारा जीवन युद्ध चलता रहता है। कौरव पांडव का युद्ध भी आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में ये बराबर चलता रहता है। तो हमको करना क्या है? कहते हैं कि जितना युद्ध है ना, ये देखो सारा का सारा अनात्मा में है। ये वृत्तियां कहाँ होती है? मन में ही ना। सुख दुख कौन देता है आपको? केवल वृत्ति है। देखो कहीं पर आप रास्ते में अगर एक्सीडेंट देख लो, तो वो एक्सीडेंट तो आपके भीतर नहीं घुसता है ना। क्या घुसा? एक्सीडेंट की एक वृत्ति, आप दुर्घटना की एक वृत्ति आपके मन में घुसी और उस वृत्ति ने आपको दुखद कर दिया। आप किसी बगीचे में गए, काफी अच्छे अच्छे फूल देख रहे हैं, सुंदर हैं, सुगंध हैं, तो फूल तो आपके अंदर नहीं घुसे ना, उनकी एक वृत्ति आपके भीतर गई, वो आपको सुखद वृत्ति हो गई। तो ये जितनी वृत्तियां हैं वो सारी की सारी अनात्मा में हैं और अनात्म वस्तुएं आपको बराबर दुख देंगी, बराबर दुख देंगी। अब आप घर जाके ये सोचना कि जब जब आपको दुख हुआ है उसका हेतु क्या है, उसकी वजह क्या है। जैसे ही खोजोगे आप वजह ना, तो आपको पता लगेगा कि सारी की सारी अनात्म वस्तु है। जब भी दुख हुआ है उसका कारण अगर खोजोगे तो आपको पता लगेगा कि कारण जो है अनात्म वस्तु है। एक स्थूल एग्जांपल ले लेते हैं, ये घर है, ये आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है। अच्छा मान लीजिए इसमें एक दरार आ जाए या एक खिड़की के में से अगर ठंडी हवा आनी शुरू हो जाए तो आशीष जी को सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा ना। आपका शरीर क्या है, आत्मा की अनात्मा? अगर इसमें दुख हो, इसमें कुछ पीड़ा आ जाए, फिर आपको दुख होता है। कुछ महात्मा कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख अपनी संतान देती है। संतान आपकी आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है। याद रखिएगा इन सब चीजों को। अगर दुख से छूटना है तो आपको याद रखना होगा कि ये सारी की सारी चीजें अनात्मा हैं और अनात्म वस्तुएं सारी परिवर्तनशील हैं और विनाशशील हैं। इनका नाश होता है और ये परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा। गीता में कहा कि आप अपने मित्र हो और अपने शत्रु हो, आप ही मित्र हो, आप ही शत्रु हो। जब आपके बीच में कामनाएं आती हैं तब आप अपने शत्रु हो, जब आपके बीच में कामनाएं आती हैं तो आप अपने शत्रु हो। और जब आप अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ते हो तो आप मित्र हो। अच्छा जब कामनाएं आती हैं तो आप किधर जाते हो, बाहर जाते हो ना भीतर जाते हो? बाहर क्या है? जगत है ना। जगत आत्मा है क्या अनात्मा है? अच्छा जैसे ही आप जगत में गए, आपने अनात्म वस्तुओं को ग्रहण किया, कुछ इकट्ठा किया, इकट्ठा करने से वासना का मतलब क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कुछ प्रिय हैं कुछ अप्रिय हैं, प्रिय अप्रिय आना शुरू हो गया। और ये प्रिय अप्रिय की जो लिस्ट है ना, ये हम बनाते हैं और सबकी प्रिय और अप्रिय की लिस्ट अलग अलग है, सूची सबकी अलग अलग है। आपके घर में भी आपके परिवार के अंदर आप देखेंगे पति की सूची अलग है, उनको कौन सी दाल पसंद है, आपको अलग है, बच्चों की सूची प्रिय अप्रिय अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। अगर आपके भीतर कामनाएं आएंगी तो आपकी ये सूची बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आप भगवान को कह रहे हो कि मेरे अब इतनी प्रिय और अप्रिय चीजें बाकी हैं, भगवान आप इसको पूर्ण करो, ये आप चाहते हैं। अब भगवान उसके हिसाब से आपको हर बार नया शरीर देते हैं, कभी पुराना मकान नहीं देते भगवान। आप हर बार देखेंगे आपको नया शरीर देते हैं, ब्रांड न्यू। कभी किसी को ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ये शरीर आपको पसंद नहीं है, चलो बदल देते हैं, आपको ये मकान दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बराबर वो नई चीज देते हैं। तो गीता में हमको ये बताया गया है कि आपका गोल क्या है, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए सारे जीवन का, उस उद्देश्य को कैसे पाना है उसकी साधना भी बता दी है। और तीसरा, उसके मार्ग में जाने के समय आपको कौन कौन सी असुविधाएं आएंगी वो भी बताया है, और उन असुविधाओं को कैसे हटाना है ये भी उसके अंदर हमको बताया गया है। तो इसको पढ़ने के पहले प्रकरण ग्रंथ की थोड़ी परिभाषाएं वगैरह पढ़नी चाहिए। खैर, हम लोगों ने प्रकरण ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो जहाँ जहाँ संदर्भ आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि संजय को दी है। दिव्य दृष्टि, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं ना, दूरदर्शन, घटना कहीं हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं दूरदर्शन। दिव्य दृष्टि क्या है? वो भी एक दूरदर्शन है। संजय बैठा हुआ है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। युद्ध का क्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, 300 माइल दूर है। संजय हस्तिनापुर में बैठ के सब कुछ जो है विवरण धृतराष्ट्र को दे रहा है। मगर दृष्ट दृष्टि के अंदर एक और ज्यादा शक्ति है, वो शक्ति ये है कि उसके हिसाब से संजय किसी भी मनुष्य के मन में घुस के उसके अंदर जो विचार हो रहे हैं वो भी समझ सकता है। हम कभी किसी का मन नहीं पढ़ सकते क्या विचार आ रहे हैं, मगर संजय के पास में उस दिव्य दृष्टि की शक्ति के हिसाब से वो केवल देख ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है बाहर से, बल्कि किस व्यक्ति के किस उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वृत्ति आ रही है वो भी वो देख रहा है। तो हम आज पहला श्लोक एक बार देख लें।
आप लोग हमारे साथ बोलिए, हमारे बाद रिपीट करिए। ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ प्रथमोऽध्यायः।
अथ प्रथमोऽध्यायः।
अर्जुन विषाद योगः।
अर्जुन विषाद योगः।
धृतराष्ट्र उवाच।
धृतराष्ट्र उवाच।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
समवेतायुयुत्सवः।
समवेतायुयुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव।
मामकाः
पाण्डवाश्चैव। किमकुर्वत संजय।
किमकुर्वत संजय।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा किससे? संजय से। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। अच्छा, भगवान वेदव्यास जो है धृतराष्ट्र को दृष्टि देना चाहते थे कि तुम दिव्य दृष्टि ले लो, तुम देखो अपने आप। मगर धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं, मेरे को दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मगर मैं जानना चाहता हूं। तो संजय को दे दिया। तो संजय कौन है? संजय है सम्यक जयति इति संजय। इस वर्ड के अंदर में धृतराष्ट्र को जय वर्ड नजर आया तो उसको बड़ा प्रसन्नता हो गई कि संजय तो अब हमारी जय की बात कहेंगे। तो क्यों उसको, धृतराष्ट्र को ऐसा फील हो रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि इसके अंदर हमारी जय होगी? तो इस श्लोक के अंदर चार कारण हैं जिसके कारण धृतराष्ट्र को जो है ऐसा अनुभव हो रहा था कि इसके अंदर हमारी विजय होगी। क्या क्या थे? एक तो था वर्ड युयुत्सव। युयुत्सव मतलब युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध करने के लिए उत्साहित कौन थे? ज्यादा कौरव पक्ष के लोग ज्यादा उत्साहित थे। तो धृतराष्ट्र सोच रहा था कि क्योंकि उत्साह हमारा ज्यादा है इसलिए जय हमारी होगी। पहली सोच। दूसरी सोच, समवेता। समवेता मतलब सब इकट्ठे हुए हैं। तो तो कौरव के पक्ष में कितनी सेना थी? 11। और पांडवों के तरफ में धृतराष्ट्र सोचता है क्योंकि हमारे पास 11 है इसलिए जीत। दूसरा, तीसरा, उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसका है? कौरव का है। अपने होमलैंड में युद्ध कौन जीतेगा? कौरव जीते। इज नॉट पांडव क्षेत्र, क्या है ये? कुरुक्षेत्र, अपने घर में युद्ध है, ये तो सारे फेवर हमारे हैं, सब हमारी व्यवस्था चलेगी यहां, इसलिए हम जीतेंगे। चौथा, धर्म क्षेत्र, यहां धर्म से युद्ध होगा, अधर्म नहीं होगा। अगर पांडव अधर्म करना भी चाहेंगे तो उनकी सेना कितनी है? 7 अक्षौणी। और अगर वो अधर्म करेंगे, मैं अगर इधर अधर्म करना शुरू करेंगे तो हमारी सेना कितनी है? 11 है। तो अधर्म के युद्ध में कौन जीतेगा? इसलिए धृतराष्ट्र जो है देख रहा था हमारी जय ही जय है। तो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्व मामका, मामका मेरे जो लोग हैं, मेरे जो 100 पुत्र कौरव के ताई में हैं, ये मेरे हैं, मामका। पांडवा दूसरे हैं, पांडवा नॉट मामका, पांडव मेरे नहीं है, पांडव हमसे दूसरे हैं। किम अकुर्वत संजय, ओ संजय बताओ बोलो क्या कर रहे हैं, क्या हुआ वहां, क्या घटना घटी ये बताओ। धृतराष्ट्र भीतर ही भीतर बहुत खुशी हो रहा है, जय हमारी होने वाली है। क्यों जय होने वाली है? ये 4 कारण है जो वो सोच रहा था, पर आगे क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। ओ
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि